अब ये है असल सूरत का हिस्सा जो मैंने पहले भी तذکرہ किया, आयत 19 से 29, अल्लाह के दुश्मनों का इंजाम। अब ये पिछली कौमों के हालात से हम पढ़ रहे हैं ना, दुश्मन नहीं थे ना। देखिए जो वक्त के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन, राइट? ऐसे जो अल्लाह की किताब का दुश्मन है वो किसका दुश्मन? अल्लाह का दुश्मन। माँ का दुश्मन बेटी का भी दुश्मन होगा, बाप का दुश्मन बेटे का भी दुश्मन है। आज इस्लाम के दुश्मन दिखते हैं, आज आपको इस्लाम पे, कुरान पे, नबी पे तोहमतें लगाते हुए लोग दिखते हैं। क्या आज लोग कुरान को नहीं जला रहे? क्या आज लोग कुरान को टॉयलेट में नहीं फेंक रहे? क्या आज रसूल के नाम पे नाम नहीं? तो ये तो हम भोले बने हुए हैं। नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं है। जिसको नहीं मानना वो उसको पता है, जिसने मान लिया फिर उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो यहाँ आप देखिए अल्लाह ताला प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मस्तियाँ कर लो, मेरे रसूल को जुटलाओ, देखो अब तुम्हारे साथ होना क्या है। वह यौम युक्षर अदाउल्लाहिलन्नारी फहुम यूज़ाउन, और वो जिस दिन वो इकट्ठा करेगा अल्लाह के दुश्मनों को आग की तरफ, और वो गिरोहों में बटे होंगे। यूज़ाउन क्या होता है? वजह से, अपने मिजाज के लोगों में रहना। क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला वहाँ एक कैटेगरी के लोगों को एक जगह कर देंगे, हत्ता इज़ा मा जाउहा, यहाँ तक कि जब वो उसके करीब आ जाएंगे, शहीदा अलैहिम समूहुम, गवाही देंगे उनके खिलाफ। ये जो शाहिदा के बाद अला आ रहा है ना, अला का क्या मतलब होता है आप सबको यकीनन पता होगा। शाहिदा ली और शाहिदा अला। ली क्या है? फॉर। अला है अगेंस्ट। शाहिदा ली उनके लिए गवाही दी, शाहिदा अला उनके खिलाफ गवाही दी। उनके खिलाफ गवाहियां देंगे उनके कान और उनकी आंखें, व जुलूदुहुम और उनकी चमड़ियाँ। ये चमड़ी ही तो परेशान करती थी ना। कभी आप बैठ के सोचिए, मैं इन आयतों पे जब आती हूँ मैं सोचती हूँ 80% गुना इंसान अपनी इस खाल, इस चमड़ी की वजह से करता है। इसी को चमकाना है, इसी को दिखाना है, इसी को हराम पे पालना है, इसी के साथ रहना है, और क्यामत के दिन इनकी खालें गिर गिर के पड़ेंगी। बहुत सारी रिवायात हैं जो इंसान के होश गुम कर देती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उनकी खालें उनके खिलाफ गवाही देंगी। अब आप सोचिए, एक बंदा जो सारी ज़िंदगी इसी को पालता पोसता रहा, घंटों पार्लर्स में बैठे, हज़ारों लाखों के कॉस्मेटिक्स लगा दिए, और कल वो खाल आपके ख़िलाफ़ बोल रही है, बीमा कानू या मलून व कालू ली जुलूदिहिम लिमा शहीद तुम अलैना, वो कहेंगे अरे भाई खालो तुम्हें क्या हो गया, तुम हमारे ख़िलाफ़ कोई गवाही देते हो। कभी सोचिए घर का बच्चा घर की कोई बात मेहमानों के सामने बोल दे, कितनी शर्म आती है। आपकी किसी से खटपट रहती हो, शरीके में ऐसा हो ही जाता है, और आपका बच्चा जाके आपकी देवरानी को बताए कि अब्बू अम्मी की लड़ाई हुई और बहुत हुआ, गुस्सा आएगा? ऐसे वक्त में जब अपना बच्चा आपके ख़िलाफ़ बोलाए तो वो अच्छा नहीं लगता। ज़रा वो दिन सोचिए जिस दिन खालें बोल बोल के गवाहियाँ देंगी कि अल्लाह ये वो करते थे, ये करते थे। और रिवायात में आता है कि इंसान की खाल बोलेगी, इंसान की ये थाईज, ये रान बोलेगी। قَالُوا أَنْتَكَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَكَ كُلَّ شَيْءٍ, वो कहेंगे आज उसने बुला दिया जिसने हर चीज़ को बुलाया। ये ज़ुबान का टुकड़ा कैसे बोलता है? लोग कहते खाल कैसे बोलेगी, तो सवाल कीजिए कि ये ज़ुबान कैसे बोल रही है? ये गोश्त का टुकड़ा है ना। मैं तो टेप रिकॉर्डर कभी जब सुनते थे कैसेट्स, तो मैं वो टेप रिकॉर्डर को घंटों देखती थी ऐसी, तू बोल कैसे रही है? एक ब्राउन कलर का कागज़ का फीता चल रहा है, और फिर ए साइड और फिर बी लगाएं तो उल्टी, समझ नहीं आती थी उस वक्त। माइंड इतना मेरा बाज दफ़ा हैरान हो जाती थी मैं, एक माइंड स्ट्रक हो जाता था, ये कैसे बोलती। वो हैरत और कम क्या होनी थी, ज़्यादा होगी जब सीडी आ गई। मैं कहती थी उसमें तो एक फीता चलता था, इसमें तो वो भी नहीं है। और रिकॉर्डिंग होती थी तो मेरे हस्बैंड कभी, हमारे पास एक वक्त था कि एक बुक स्टोर था तो उसमें ये चीज़ें होती थी, तो मैं इनको कहती थी कैसे पता चलता कि ये रिकॉर्डेड सीडी है या अनरिकॉर्डेड। तो ये मुझे दिखाते थे कि रिकॉर्डेड में ये लाइनें पड़ जाती हैं और अनरिकॉर्डेड में नहीं होती। वो बड़े गौर से देखे तो दिखती हैं सीडी कैसे बोलती है। क्या क़यामत के दिन हाथ और उंगलियां और पांव नहीं बोल सकते? قَالُوا أَنْتَكَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, वो ज़ात जिसने तुमको पहली दफ़ा पैदा किया और उसी के हुक्म से बोल उठे, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيرُونَ। ज़रा गौर से सुनिए इन आयतों को। आज हम अपने टेलीफोन पर जितनी दफ़ा टिक 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 करें, टैब को हिलाएं, अपने लैपटॉप को देखें, एक एक प्रिंट चल रहा है, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला यहाँ अगली आयतों में यही बात बता रहे हैं कि वमा कुन तुम तस्ततिरून आई यशद अलैकुम समुकुम अला अबसारुकुम। तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें ये ख्याल नहीं आता था कि कभी तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी खालें गवाही देंगी। आज हम सोचते हैं सबसे छुप गया, आज तो लोग खुद दिखाते हैं। मैं हैरान होती हूँ जितने गैजेट्स खुलते जा रहे हैं, लोग तो अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाने लग गए। क़यामत के दिन इंसान की खाल कहेगी कि आज तुम्हें मेरे इस बोलने पे अफसोस और रंज और गुस्सा आ रहा है, ये बताओ कि क्या दुनिया में जब तुम गुनाह करते थे उस वक्त तुम्हें ये ख्याल नहीं था कि हम गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को खबर भी नहीं होती। सच बताइए, जब एक इंसान गुनाह करता है तो उसको एहसास होता है? और वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़नन्तुम बिरब्बिकुम, ये था तुम्हारा गुमान अपने रब के बारे में। अर्दाकुम फसबख्तुम मिनल खासिरीन, जो तुमने उसके साथ किया और आज तुम खसारे में आ गए। अब क्या गुंजाइश है? फ़ई यस्बिरु फ़न्नार, ज़रा इस जुमले पर रुकिए, फ़ई यस्बिरु फ़न्नार, आज वो सब्र कर लें तो भी अंजाम आग है। और दूसरी सूरत एक है, मसवल्लाहुम उनके लिए, वहीं यस्तातिबू फमाहुम मिनल मोतबीन, और अगर वो रुजू करना चाहें, झुकना चाहें, तो आज उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी दोनों में एक भी चॉइस नहीं है, आज रोती सूरत बना लें या सीधे रख लें, कोई भी नहीं होगा, बल्कि क़्यामत के दिन वो इंसान परेशान होंगे। वक़ैयत ना लहुम कुरना, हमने उन पर बुरे साथी मुकर्रर कर दिए। फ़ज़ैय्यन लहुम मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जिन्होंने खूबसूरत करके दिखाया उनके लिए आगे और जो उनके पीछे। आगे क्या था? गुनाह करते थे। पीछे क्या था? आखरत को पीछे डाल देते थे। वहक अलैहिमुल कौल फी उममिन, और ये बात साबित हो गई उनके बारे में उम्मतों में। कद हलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नी वल इंसी, जो जिन्नों और इंसानों में से गुजर चुकी। क्या साबित हो गया? ये इन्नहुम कानू खासिरीन, देवर लूज़र वन, ये झुटलाए वाले। अब देखिए कि अल्लाह के दुश्मनों का एक इंजाम क्या आपने देखा इस एक आयत में? देखिए कि उनके अपने हाथ पों गवाही देंगे, फिर दूसरी बात यह है कि उनकी छुपी हुई बातें खुल जाएंगी, तीसरी बात है वो सब्र करें ना करें लेकिन उनके उज़र कबूल नहीं होंगे, और चौथी बात कि वो खासिरीन है। आप अल्लाह के दुश्मनों का लफ्ज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं ये पता नहीं कौन से मिज़ाइल लेकर बैठे हुए हैं, ये कोई बुलेट है? नहीं, ये है इस वक्त जो नुक्ता अगर मैं और आप समझ जाएं तो यकीन करें कि सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाए। क्या तरीका था दुश्मनों का अल्लाह के नबियों के खिलाफ काम करने का? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, ला तस्मौ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान को ना सुनो, वलगौ फ़ीही, और इसमें शोर करो, क्यों? लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब रहो। कल भी यही कोशिशें थी, आज भी यही कोशिशें। हर दौर के कुफार तक ये जानते हैं कि कुरान का दिलों पर असर होता है। इस वक्त अगर मैं नॉर्मल रूटीन से बात कर रही होती ना, कुरान की एक आयत हम पढ़ रहे होते इस वक्त, तो आपको ऐसे लगता कि अभी छत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और ये आयतें आपके सीने पे नाजिल हो रही हैं, क्योंकि कुरान का एक नज़ूल नबी के सीने पे हुआ था। आज वो नज़ूल हमने इसके मानी और मफहूम का जब तक अपने दिल पे ना लिया, हमें इस कुरान से कुछ नहीं मिलना। ये कुरान वो चीज़ है जो लोगों को बदलता है। नज़र बिन हारस ने उस दौर में लौंडियों को ख़रीदा, सूरत लुकमान में आगे जाकर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज साइंस की तरक्की ने इसको और ख़राब कर दिया। कुरान की मजलिस में आप देखिए, 100 लोग बैठे हो ना, उसमें सिर्फ 2 लोग हरकत भी करें ना, सारा मजमा ख़राब हो जाता है। 2 लोग बात करें ख़राब होगा, उठना बैठना, एक हल्की सी आवाज़ आ जाए, सेल फ़ोन कह लीजिए या कोई वाइब्रेशन आ जाए, ऐसे लगता है जैसे एक तसव्वुरात का महल टूट जाता है। कुरान सुनते वक्त जितना जज्ब की कैफियत हो वो, और याद रखिएगा कि कुरान के जज्ब के रस्ते की सबसे बड़ी रुकावट आवाज़ है। जब इस क्लासरूम में आके बैठते हैं ना, अंदर बाहर के स्विच ऑफ करके आए। बाज़ लोग इतनी मुश्किलों से घर से निकल कर आते हैं, यहाँ आते ही उनको अपने गम याद आने लगते हैं। अच्छा फ़ोन चेक कर लूँ, अच्छा मैसेज चेक कर लूँ। मैं सोचती हूँ जब फ़ोन्स नहीं थे तब क्या होता था, और हमने कौन से किसी मुल्क में जंग के होने या ना होने का कोई ऑर्डर देना है जो हमारे 1-2 घंटे अवेलेबल ना होने से गड़बड़ हो जाएगी? आखिर जहाज़ों में भी तो 8-8, 10-10 घंटे फ़ोन बंद रखते हैं ना। ये कुरान ना सुनने के ख़िलाफ़ कल भी कोशिशें थी, आज भी हैं। पता क्यों? कुरान की महफिलों में दिल खुल रहे होते हैं। जब किसान जो है ना, वो ज़मीन में गोडी करता है ना, फिर ही बीज डालता है ना, समझ वो किसान है कि जो बीज डाले और अभी ज़मीन तैयार ना हो। ये आप भी जो उठते बैठते अपने बच्चों को नसीहतें और इंस्ट्रक्शंस जो करते हैं वो बेकार है। पहले दिलों की मिट्टी को नरम करें, गोडी करें। वो आप कह लीजिए कि जैसे अंदर खुल रहा होता है उस वक्त, कभी आप देखें उस वक्त ही फैसले होते हैं। मैं अक्सर साथियों को कहती हूँ जो फैसला करना है इस क्लासरूम में करें, इसके दरवाजे में जाने से पहले यस नो कर लें, ये हुक्म सुने अमल करना है, गो हेड बिस्मिल्ला, जो होगा देखी जाएगी। वो कहते हैं इस क्लासरूम में बैठ के हर चीज़ मुमकिन लगती है। मसला वो होता है जब गाड़ी में बैठ के घर का रुख करते हैं, फिर घर पहुंचते हैं तो वो और ख़ानदान सामने आ जाए तो फिर तो इम्पॉसिबल। तो आपका मेरा आज के दौर का ये जिहाद है कल ये कोशिशें कुफार की थी, मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि आज इन कोशिशों में मुसलमान भी शामिल है। आज उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कुरान सब कुछ है हमारे लिए, किताब हिदायत नहीं है। वजीफ़ों की किताब, बरकतों की किताब और सारी बातें मौजूद हैं, बेटियों की शादियों में और जहेज़ एडिशन और उसकी कैलीग्राफी देख लीजिए, लेकिन इसको सुनने से रुकावट है। पढ़ा लें कुरान, 100 पढ़ लेंगे, आप सारों के हाथ में एक एक सपारा दिया जाए, मेरे हाले 10 कुरान हम यहाँ से पढ़ के उठें एक घंटे में, बड़े आराम से लोग आएंगे। आपसे 10 गुना मजमा ज़्यादा होगा अगर आप सिर्फ सपारे पकड़ाएं हाथों में। लोगों को कुरान तब मुश्किल लगता है जब ये खुलता है। मैं एक जुमला बोल देती हूँ, अक्सर साथी मुझे कहते हैं सिर्फ इस एक जुमले के बाद ही हमारा परसेप्शन कुरान से बदला, और वो जुमला क्या है कि बंद कुरान की तज़ीम बहुत लोग करते हैं, खुले कुरान पर अमल बहुत कम लोग करते हैं। कुरान खुलता है लोग डरते हैं, अंदर नहीं आते क्लासरूम में, आप तो आगे पता नहीं किस ख्याल में आगे, लोग डरते हैं, ना 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 ना, ज़िंदगी मुश्किल होगी, अमल करना पड़ेगा, घबराते हैं, बच्चों को यूँ अंदर फेंक के जाते हैं जैसे करंट ना लग जाए हमें, नहीं मैं जॉब से आई हूँ, नहीं वो ये नहीं वो नहीं, कोई दुपट्टा ढूंढता है, कोई कपड़े खींच रहा होता है, भाई अंदर आके आपको कोई ज़रूरत नहीं दुपट्टों की, इधर कोई मर्द नहीं है, पहनना है तो नीचे जाके पहन लीजिएगा जहाँ मर्द होते हैं। आज का मुसलमान इस कुरान से एलर्जिक है। आगे देखिएगा क्या है, फल नज़ीकन्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा। अब देखिए यहाँ किन को काफिर कहा जा रहा है, गौर से देखिए, पस अलबत्ता ज़रूर हम चखाएँगे काफिरों को दर्दनाक अज़ाब, शदीद अज़ाब चखाएँगे। वल नज़ीनाज़ी कानू या मलून, और हम उनके अमाल की बुराई उनको दिखाएँगे जो वो करते थे। यानी कोई अल्लाह के कलाम का रास्ता रोके तो अल्लाह उनको ऐसे ही छोड़ दे, ये कभी नहीं हो सकता। और साथ ही बता दिया ज़ालिका जज़ा अदा इल्लाहिन्नार, ये है जज़ा अल्लाह के दुश्मनों की, वो है आग। लहुम फ़ीहा दारुल खुल्दी, उनके लिए हमेश की का घर है उसमें। बिमा कानू भी आयातिना यजहदून, बवजह इसके कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। अब ज़रा वहाँ उनकी हसरत देखिए, सारी ज़िंदगी तो नबी और कुरान की दुश्मनियों में गुजर गई, वहाँ जाकर क्या कहेंगे। आप ज़रा इसको लेते हुए तसव्वुर में लाइए किसी ऐसे इंसान को जो आपको अल्लाह के कलाम से रोकता है। वकाल अल्लज़ीना काफरू, और कहेंगे वो लोग जो काफिर हैं, रब्बना अरिनल्लज़ीना, यहाँ थोड़ा सा रुकिए, ये ज़ीन है वाहिद लफ्ज़ है पूरे कुरान में जो तस्निया में आता है। कई लोग मैंने हाफिज़ों को भी गलती खाते सुना है कि अल्लज़ीना पढ़ जाते हैं, पूरे कुरान में ओनली दो मिसालें हैं तस्निया की, एक इधर अल्लज़ीना और दूसरी सूरह हशर में खालिदीन। तो ये जब भी कभी कुरान पढ़ें तो रवा रवी में मुँह से निकल जाता है क्योंकि आम नहीं है, कहेंगे वो काफिर है रब हमारे, दिखा हमें वो दोनों गिरोह। अब इसको सब नहीं कहेंगे, अल्लज़ीना कौन, अदल्लाना मिनल जिन्नी वल इंसी, जिन्होंने हमको भटकाया जिन्नों और इंसानों में से, हम क्या करेंगे, नजलहुमा तहत अक़दामिना, हम उनको अपने पाँव के नीचे रोन देंगे। तसव्वुर आ रहा है, ठुड्डे मारेंगे इनको, हम इनको अपने पाँव के नीचे मसल देंगे, क्यों, लियकूना मिनल असफलीन, ताकि ये दोनों हो जाएं सबसे ज़्यादा निचलों में। आज दुनिया में कितना अच्छा लगता है इंसान को ऐसे लोगों की बातें सुनना, कहते हैं ये हैं कामयाब, ये हैं क्लेवरस, ये मौलवी, ये बेकार लोग हैं, ये पता नहीं कैसी बातें करते हैं। क़यामत के दिन बस नहीं चलेगा। आप देखिए, कभी सोचिए, आपके हस्बैंड्स ने कोई जॉब की, फिर सोचा कोई दोस्त कह रहा है कारोबार कर लो, लाओ सारी उम्र की कमाई, बीवी का जेवर बेचा, घर बेचा, चलो कारोबार करते हैं, सारी जमा जुथा की, कारोबार शुरू किया और पता चला वो धोखे से सब ले गया, क्या दिल करता है। पुलिस का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है जहाँ उसको भेजें, इंसान का दिल करता है उसको ज़मीन के अंदर डाल दे, क्या जेवर है, घर है, फिर आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। लेकिन आप सोचिए वो लोग जिनकी वजह से आपकी मेरी जन्नत चली गई, जिसकी वजह से हम जन्नत के, मैं कहती हूँ सिर्फ एक दर्जा नीचे आ जाएँ, बड़े छोड़ दीजिए, 100 दर्जे हैं, डोंट वरी, वी आर सिक्योर्ड। लेकिन अगर तसव्वुर ही पहले पर रखा हुआ है कि बस इधर पहुँच जाऊँ तो वहाँ से हाथ नीचे गया तो किधर जाएंगे। आज हम मुसलमानों को इस चीज़ को सोचना है। मैं अक्सर साथियों से बात करती हूँ, लोग बात करते हैं, फ़लाँ मौलवी कहता है सूद हलाल है, फ़लाँ कहता है पर्दा कोई नहीं ज़रूरत, और वेस्ट में रह के तो चाहे कपड़े भी ना पहनो और तुम्हारी मजबूरियाँ ये वो है। तो किसी ने मेरे से ये सवाल किया, मैंने उन्हें कहा मुझे एक बात का जवाब दें, आप जूस कौन सा पीते हैं, पानी मिला हुआ या प्योर। प्योर का भी लफ्ज़ ऑर्गेनिक लिख दें तो 2 पाउंड ऊपर ही कीमत हो जाएगी, तो आपको प्योर ले लें। मिसाल है कि मौलवी साहब ने कह दिया सूद हलाल है, हलाल ही था, लेकिन आपने किसी की प्योर बात कुरान सुन्नत की सुन के उसको हराम ही समझा, आपका क्या बिगड़ा। कल जाके वहाँ जितने मर्जी घर बनाइए, यहाँ भी बनते, क्या सबके घर हराम से बनते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने केमिकल वाला जूस पी लिया तो जो वहाँ की महरूमी है वो किधर है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि एक काफिर ने एक दफ़ा उनको रोका था कि ये तुम मुसलमान कितने बेवकूफ़ हो, अनदेखी आखरत के लिए तुम रोते हो, जब देखी नहीं उसके पीछे दुनिया के मज़े किरकिरे करते हो, हम होते वहीं रुक जाते, हाँ वाकई फी फील सो पिटी। नहीं, अब उनका जवाब सुनिए, कहने लगे मेरे दोस्त बिलफर्ज जो बात तुम कह रहे हो कि आखरत नहीं आनी, ये ठीक हुआ और मैंने आखरत की उम्मीद में कुछ अच्छे काम कर लिए तो मेरा क्या बिगड़ा, किसी को फ़ायदा ही हो गया ना, अगर मैंने किसी को सदका दे दिया अच्छा काम किया मेरा क्या बिगड़ा, चलो मुझे नहीं वहाँ मिलेगा फ़ायदा, यहाँ दुनिया में नेकी का किसी को बदला मिल गया, लेकिन तुम सोचो एक लम्हे के लिए कि अगर मेरी बात सच है, आखरत आई और हर बात का जजा सजा मिली तो तेरे साथ क्या बनेगा। ऐसा मुदल्लल अंदाज था वो शख्स मुसलमान हो गया। आज इस इंटेलेक्चुअल जिहाद की ज़रूरत है। वी आर नॉट सॉरी टू बी मुस्लिम, वी आर ऑनरेबल, वी फील प्राउड टू बी मुस्लिम। आज अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें। वो आता कैसे? अब आप देखिएगा कि यहाँ ये बात करके अल्लाह ताला ने दूसरा हिस्सा पूरा किया, यहाँ से अब आ गए। पीछे बात थी कुफार की कोशिशों की, बहुत सारे लोग इस पे घबराते हैं, मारो उनको, ये करो, तबाह करो, मुर्दाबाद और फुलां। नहीं, करें क्या, आप और मैं ये काम कर लें, सिर्फ 6 आयतें हैं, करना चाहते हैं अमल? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نمبر ون۔ کل ربن اللہ کہنے پہ چوٹیں پڑتی تھیں، پتھروں پہ گھسیٹے جاتے تھے، سب چیزیں چھین لی جاتی تھیں۔ آج آپ کو مجھے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ دیکھیے ایک کلمہ بلال نے پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، और उमैया क्या कहता था, कहता था कि ये जुमला ना बोला कर, दोबारा वही बोलते थे, कितनी मारें खाई बिलाल ने। आज मैं और आप दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कहें अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मार पड़ती है? नहीं पड़ती। असल हमारी आज की मार है सुम्मा इस्तक़ामू पे। जुमला लिख लें, कल के दौर में रब्बुन अल्लाह कहने पे मुश्किलात आती थी, आज इस्तकामत पे मुश्किलात आती हैं। अल्लाह को रब बना लें। हर बच्चा दुनिया में आने से पहले ही उसके अंदर ये एक चीज़ मौजूद होती है कि कोई है मेरा। पैदा हुआ माँ बाप रब लगते हैं क्योंकि वही पालते हैं, कमा रब बयानी सगीरा, दुआ में भी ये बात है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो भाई बहन दोस्त अहबाब लगता है वो कुछ करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता है माशरा मेरी पूरी मदद करता है, ये टीचर है मेरी हेल्प करें। इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो फिर कायनात को देखता है, सूरज चांद सितारे, उसको लगता है मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सर्व कर रही हैं। यहाँ पर काफ़ी रुक जाता है मोमिन, इससे ऊपर कहता है कि इन सारी चीज़ों को देने वाले को मैं रब कहता हूँ। तो पहली बात जो आज हमारे अंदर कमी है ना, वो रब्बुन अल्लाह की है, इसको पक्का करें। जिस दिन आपको मुझे इसका यकीन हो गया ना, वो रब है। देखिए यहाँ अल्लाह नहीं कहा, खालिक मालिक नहीं कहा, लफ्ज़ रब की डिटेल तो सूरह फातिहा से ही पूरी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह को एक कहना लेकिन उसके बाद सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तक़ामत, ये बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है अपने आप को मुसलमान कहना? वो कहते हैं कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है फारसी का कि चैमी गोयम मुसलमानम बलर्जम के दानम मुश्किल आते ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ख़ुद को मुसलमान कहते हुए मैं कांपने लगता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद मुश्किल क्या आती हैं। सवाल पैदा होता है क्यों आती हैं? इसलिए कि बंदा जम जाए। देखिए एक कील लें, आप 6 महीने उस कील को इधर दीवार के साथ लेके हाथ से ऐसे करते दें, कभी दीवार में नहीं जाएगा, पीछे से हथौड़ा पड़ेगा, 1 मिनट में कील अंदर जाएगा। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर आपके ऊपर आजमाइशें और मुश्किलात नहीं आती, समझ लीजिए कि आपकी तौहीद में कमी है। जितना बड़ा ईमान उतनी बड़ी आजमाइश। एक पूरा मौजू है इस पर, हमने एक पूरी सीरीज़ की थी ईमान और आजमाइश का ताल्लुक। पढ़ने के बाद पता चलता है कि अल्लाह जो मुश्किलात गुजर गई हैं तेरा शुक्र है तूने गुजार दिया, आगे भी ऐसे ही रखना। तो मुश्किलात मेरे आपके इम्तिहान के लिए आती हैं। हज़रत बिलाल का एक जुमला बहुत मशहूर है तफसीर में कि तुम एक मट्टी का घड़ा खरीदते हो तो उसको ठोक बजा के देखते हो कि इसमें छेद तो नहीं है, सुराख तो नहीं है, तो क्या मेरा रब जो मुझे ख़रीद रहा है वो मुझे नहीं देखेगा? तो ज़ुबान से तो देखा देखी भी कह दिया जाता है, इसके लिए ज़रूरत है। और याद रखिए कि अगर मुश्किलात नहीं हैं तो ये सतही ईमान है। ये ऊपर का एक कोट है, एक पानी डालेंगे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सुमस्तकामु, आप इस्तकामत पर रहें, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर उतरते हैं फरिश्ते। ततनज़्ज़लु, इतनी खूबसूरत, इस पर आप दर्स ज़रूर सुनेगा। आज तो खुलासा है, अगर आपको मौका मिले सबीलुल जन्ना में जाकर या किसी भी तफसीर में इन आयतों की तफसीर सुने, और इस पर अलग से लेक्चर्स भी मौजूद हैं। ये ततनज़्ज़ल में क्या क़यामत है ये मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि पहले ये नज़ल था, फिर तनज़्ज़ल हुआ, और यहाँ ततनज़्ज़ल है। अब इस एक के अंदर एक से एक पता नहीं कितने ख़जाने छुपे हैं अरबी ज़ुबान के। लेकिन यहाँ इतना पता लग गया कि जो अल्लाह को रब कहने के बाद जम जाते हैं तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं। आप कहते हैं फरिश्ता तो नबी पे उतरता था, जिब्राइल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आते थे, तो नोट कीजिए कि फरिश्ते आज भी आते हैं। एक फरिश्ता तो हर बंदे के पास आता है, चाहे वो फाजिर और काफिर क्यों ना हो, वो है मलकुल मौत। मौत का फरिश्ता तो हर एक पे आता है। बदर में भी फरिश्ते उतरे थे, लैलतुल कदर में फरिश्ते आते हैं। और ये जो कभी आपके अपने ऊपर बीता हो ना, तो आपको शायद इस वक्त भी फील हो रहा हो कि आपके पास कोई फरिश्ते आए हैं। कभी ऐसा हुआ अल्लाह की बात मानते हुए कोई काम किया बड़े जोश से, और इतनी मुखालफत हुई कि शौहर ही बोल पड़े कि दो लफ्ज़ बोल दिए, तीसरा बोल दूंगा। कभी ऐसी आजमाइशें आती हैं, बीबी आसिया की हुई थी आजमाइश, क्या क्या आजमाइशें नहीं आईं। लेकिन एक जुमला लिखिए, बाहर आजमाइशें लेकिन अंदर की कैफियत देखिए, अल्लाह तखाफु वला तखसन। ये है मोमिन, अंदर खुशखबरियाँ होती हैं। तख्ते दार पे भी बीबी आसिया के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, सूरह तहरीम में पढ़ेंगे, आखिरी सूरत है 28वें पारे की। और बीबी सुमैया जिसको अबू जाहल ने इतनी अजियत से मरवाया कि जिसम के दो टुकड़े हो गए, उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आप और मैं, वल्लाही मैं इस एक आयत को एक क्राइटेरियन समझती हूँ अपने आप को परखने का। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, जंगें लग रही, लड़ाइयाँ हो रही, वेपन्स हैं, बिजली जा रही आ रही, 100 गम तो आपको दुनिया ही सुनाती है। अखबार पढ़ लें आपको 50 मसले तो उसमें दिखेंगे, आप अपने अंदर देखेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या है। अगर अंदर खुशी है ना तो ये खुशखबरी है। ये जो दीन पे काम करते हुए आपको थकन कभी हुई? अक्सर लोग कहते हैं कैसे करते हैं भाई, क्यों थक जाता है बंदा? मैं कहती हूँ दुनिया के काम करते हुए थकन होती है, दीन का काम करते हुए एनर्जी मिलती है, वल्लाही एनर्जी मिलती है। सिर्फ बीच में आधा पौना घंटा आपको बशरी ज़रूरियात के लिए मिल जाए, आप दोबारा उतने ही मुतमईन हो के बैठ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको मजबूती देता है। कई ऐसे लोग हैं कुरान पढ़ने से पहले छोटी छोटी बात पर टप टप आंसू, नाजुक अंदाम थे, बात बात पर रोना आता था, फिर आप दीन सीखते हैं, इतनी जुरत आती है कि हज़रत उमर की बहन फातिमा की तरह आप खड़े हो जाते हैं, उमर मैं तुझे नहीं दूंगी कुरान, जरूरत आती। इस पे फिर लोगों को दीन सीखने वाली सिस्टर्स बुरी लगती हैं, इसको बोलना आ गया, ये हक मांग रही है। एक तो जिस दिन वो हक महर का टॉपिक पढ़ती हैं ना खवातीन 5वें पारे में, उसी दिन घर जाके हक महर मांगती हैं। मैं उनको पक्की करती हूँ खुदा के लिए आज ना ये जिक्र करना। कहीं कहते आज जा तो लूँ घर, मैं आता है ज़रा मियाँ मैं लेती हूँ हक महर, मुझे तो पता ही नहीं था। यानी वाहद फ़ायदा कुरान से उनको यही मिला है। तो बहरहाल आप देखिए, जितनी मर्जी आजमाइशें आ जाएँ लेकिन आप इस फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस करें, और बंदा अपनी दोस्ती से पहचाना जाता है। बहुत साथी छूट जाते हैं, बड़ा प्यार छूटता है शुरू में, लेकिन दोस्तें आपसे जान छुड़ाती हैं, रिश्तेदार मुंह फेरते हैं, अब ये आ गए मुल्ला बनकर तो हमारी तो पार्टी ख़राब हो गई है, तो इतनी तनकीद करेंगे, ये तो घर जाके सुनाएंगे, तो इनको नहीं बुलाते। बंदा लोनली होता है, लोनली इन क्राउड। याद रखिए हाफिज़ असद हैं, एक जू से मुस्लिम हुए थे 19वीं सेंचुरी के शुरू में। कभी आप उनकी बुक तो पढ़ें, जर्नी ऑफ इस्लाम या कुछ है, इंग्लिश बुक है, आप रोएंगे। कहते हैं हिजरत और कुर्बानी, यानी जब मुसलमान हुए थे ना तो उसके बाद की उनकी फीलिंग्स। और 5वें पारे में मैं एक आयत है उसमें उनका कोट पढ़ के सुनाती होती हूँ कभी, जिसमें वो ये कहते हैं कि हिजरत यानी इस्लाम पे आओ तो तन्हाई ये लाजिम मलजूम है। एक वक्त आएगा कि आप तन्हा ज़रूर होंगे, सब आपको छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर जो होगा वो आप देख सकते हैं। आप देखिए कि ये खुशखबरियों की बातें करके साथ ही कह दिया कि दोस्ती है, तुम्हें सब छोड़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हम हैं ना, क्या छूटा और क्या मिला, अच्छी दोस्तियां मिल गई। और साथ ही वो क्या कहते हैं कि हवाब शिरु बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तू अदून, ये कुंतुम तू अदून दिए ही जाते थे, माजी इस्तमरारी, इंग्लिश उर्दू में आपने सुने पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, ये वो है। कितनी बार कुरान में आप देखिए कि जन्नत के वादे हैं ना, फरिश्ते कहते हैं तुम्हें आज वो जन्नत मिलने वाली है, नहनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की ज़िंदगी में। ये जो आंसू पोंछते हैं ना, ये फरिश्ते पोंछते हैं, ये दिल पे जो फाहा रखते हैं ना दीन की आजमाइशों पे, ये फरिश्ते रखते हैं। हम महसूस नहीं करते, कभी तन्हा रहें कभी खामोश रहें, फिर अपने अंदर से इस चीज़ को महसूस करें। और साथ ही कहते हैं कि आखिरत में भी होंगे, कि किस तरह फरिश्ते इंसान की मदद करते हैं, कि जन्नत की खुशखबरियां भी होंगी जिसके तुमको वादे दिए जाते थे। और साथ ही कहते हैं कि देखो ये सिर्फ साथ यहाँ तक का नहीं है, इससे आगे का भी साथ है, वलकुम फी हमा तश्तही अनफुसकुम, और यहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसकी तुम ख्वाहिश करते थे, वलकुम फी हमा तदाउन, इसमें वो सब कुछ है जो तुम मांगोगे, नुज़ुल मिन गफूर रहीम। ये एक मेहमानी है बख्शिश वाले रब की तरफ से। अब यहाँ पे अगर मैं छोटी सी बात रोकूँ आपके लिए, ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म पे कितनी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं। सच्ची बात है, इंसान का नफ्स मांगता है, शायद आप में से भी किसी का दिल करता हो बाल खोल के मैं भी फिरूं बाहर, मैं भी ज़रा जड़ी चोटी का जोर लगाऊं, मैं भी खूबसूरत बनूं, ये करूं वो करूं, दिल करता है इंसान का, झूठ तो नहीं है। अल्लाह कहता है मैं वहाँ दूंगा। आप देखिए कि कुछ मज़ाहब है जिसमें ख्वाहिशों को रोक लिया जाता है, ख़त्म, निर्वाण। बुद्ध मत में निर्वाणा क्या है, डिस्ट्रॉय ऑल प्लेयर्स। इस्लाम क्या कहते हैं, इसको मूव कर दो। जन्नत में जाके एक एक चीज़ का नाम लेके मांगिएगा अल्लाह से, खुले बालों से फिरिएगा, खुशबुओं के भभोके देकर जन्नत में फिरें आप, परियां बने हूरे बने आप। क्या दिल करता है, आप में से किसी का दिल करता है? मैंने एक सिस्टर से ऐसी किसी क्लास में पूछा, कहती मुझे कटे हुए बाल खोल के फिरना बड़ा पसंद है। अब स्काफ पहनना, अब तो खैर माशाल्लाह हम कंघियां ही नहीं करते, तो हम जैसा ला खौफुन अलैहिम कौन होगा। तो आप जन्नत में अल्लाह के घर खोलें और दुनिया में कोई चीज़ देखें, कोई गोल्ड का सेट, कोई चांदी की, सोने की, कोई चीज़ नई हैसियत या नहीं, अल्लाह ने कहा दो, कहना अल्लाह ताला इसको बुक कर दे। देखिए कई ख्वाहिशें ऐसी होती हैं हमारी पूरी नहीं होती, फिर हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें जन्नत में अल्लाह सुबहाना ताला जब हमारी पूरी करेंगे ना, तो वहाँ याद आएगा, अरे ये तो मैंने बुक कराया था, आज से लिख लें। वैसे औरतें भूलती कोई नहीं, हमने वो मियाँ को पहली रात का वादा भी याद दिलाना होता है जो आपने पहले दिन कहा था, फिक्र नहीं करो बेगम डायमंड का सेट ले दूंगा, हाँ तो आज 15 साल उसको पता नहीं हम वो सेट लेने के लिए उसके साथ रह रहे हैं, वरना तो हम कब के छोड़ चुके होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये सब कुछ होगा, आप चंद लम्हे के लिए खुद को जन्नत में सोचें। यहाँ पे एक टॉपिक पूरा हो रहा है क्योंकि अब इसका दूसरा हिस्सा शुरू होगा, और वो क्या है कि आपके मेरे लिए इस दुनिया में छोटी सी कुर्बानी, लेकिन शर्त क्या है कि जो लोग कर रहे हैं उसको नहीं देखें, जो लोगों का रब कह रहे हैं उसको देखें। आप देखिए कि इस्तकामत की मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कि जिसकी नज़र जन्नत पे लग जाती है ना, उसको किस्तें देनी मुश्किल नहीं लगती। कई लोग वाकई हक हलाल की कमाई से घर लेते हैं। एक माँ है वो कहती, हम अपना घर लेने के लिए बच्चों को पिज़्ज़ा नहीं खिलाते, बच्चे बाहर का खाना नहीं खाते, और अब तो बच्चे भी कहने लग गए हैं मामा अपना घर लेना है ना तो फजूल खर्ची नहीं करते, कुर्बानियाँ देते हैं। 2-4-10 साल में अल्लाह ताला घर देगा ना इंशाल्लाह। आप सोचिए जिस दिन आप जन्नत में जाएंगे सारी कसरें पूरी हो जाएंगी। माँ तश इस माँ में तो हर अधूरी ख्वाहिश छुपी हुई है। फ़ला तालम नफ्सु मा अख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, असल बात है कि मोमिन का दिल फिर इस दुनिया में लगता ही नहीं। ये भी मज़े की बात है। आप देखिए कि जिसने पाकिस्तान का एक गाँव देखा सिर्फ, वो शहर में आ जाए उसकी क्या हालत होगी, गाँव अच्छा लगेगा? ये हमारी मासियाँ आती हैं तो बिगड़ जाती हैं, वापस गाँव नहीं जाती, कहती नहीं उनके टॉयलेट बाहर जाने पड़ते हैं, हम नहीं जाते। तो जो नॉर्वे और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और आपके पास स्कॉटलैंड आ जाए, वो जाके फिर रहता किसी ऐसी जगह पे जहाँ बिजली भी ना हो? नहीं रहता ना। जिसको जन्नत नज़र आएगी ना, वो कभी इस दुनिया में उसका दिल नहीं लगेगा। हदीस में होता है मौत के वक्त मोमिन की रूह ऐसे उछलती हुई जाती है, गुड बाय, खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। कुरान कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बी की राधियतम मर्दिया, सिर्फ इस दुनिया में चंद दिन की फिक्र कर लें, आप देखेंगे आगे खैर होगी। अब आगे जो नुक्ता है ना, ये आप कहेंगे ये मौलवियों के लिए, ये चंद दर्स देने वालों के लिए, ये चंद पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने उम्मत के हर शख्स को यही जिम्मेदारी दी। अगर आप ये आखिरी आयतों को देख लें इस हिस्से की, तो आप इसको देखेंगे, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दअ इला अल्लाह, और उससे भी अच्छी बात है किसी की जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। सोचिए दुनिया में बातें तो बहुत सी हैं ना, सबसे अच्छी बात किसकी है? मिम्मन दअ इला अल्लाह। देखिए लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स, लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स, خالق سے مخلوق کو جوڑنا، اس سے بڑا سوشل ورک کوئی نہیں ہے. آج انسانیت تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے رب کو ڈھونڈ رہی ہے، اور میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ مؤذن ہے، اور یہ جو عاملہ صالحن ہے یہ دو نفل ہیں جو نماز سے پہلے پڑھتے ہیں. لیکن اس ایک آیت کو دیکھیں تو اس میں ہر وہ شخص ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، اور امت مسلمہ کا ہر فرد مبلغ ہے. یاد رکھیں، لکھ لیجئے، یہ وحدت انسانیت کی بنیاد ہے. پوری یونیورس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں نا ایک نقطے میں، جنگیں نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، مذہب کی جنگ نہ ہو، تو سب کو ایک چادر میں ڈال کے کناروں سے پکڑ کے جوڑ دیں، اور وہ کیا ہے؟ ممن دعا اللہ. جہاں رہتے ہیں، میں جہاں سے آئی ہوں میں آپ کو کھلے عام بتاتی ہوں کہ وہاں کے 90% لوگ ایتھیسٹ ہیں. یعنی ناروے کرسچن کنٹری نہیں ہے، ایتھیسٹ کنٹری ہے. وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں کوئی خدا ہے. آپ ان میں سے کسی ایک کو خدا کی پہچان کر دیں، اس سے زیادہ خوبصورت بات کسی کی نہیں. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اور دیکھیے، دا اللہ، دا الہ جماعت نہیں ہے، دا الہ مسلک نہیں ہے، دا الہ استاد نہیں ہے، دا الہ ادارہ نہیں. اصل وہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے جو لوگوں کو رب سے جوڑ رہا ہے. اور کئی لوگ ہیں رب سے جوڑتے جوڑتے خود سے جوڑنے لگتے ہیں. اگر میں نے آپ کو اپنے سے جوڑا تو خدا کی قسم یہ میرا گھنٹہ ڈیڑھ ضائع ہو گیا، اور اگر میں نے آپ کو اپنے کسی نام سے جوڑنا ہے تو یہ خطرے میں پڑ گیا. صرف ایک کام پہ اللہ کے دین کا کام کیجئے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. بس قبر میں کسی کا نام نہیں آنا، نہ میرا آنا ہے نہ آپ کا آنا ہے. ساری دنیا بھی آپ کے نام کے اندر آ گئی نا، تو آپ کو کچھ نہیں ملنا اگر آپ نہیں جڑے رب سے. اور جوڑتا کون ہے؟ جو خود جڑا ہوتا ہے. جس نے چکھی نہیں وہ کسی کو کیا چکھائے گا. ماں رب سے جڑے گی تو اپنے بچے کو جوڑے گی. اور آپ یاد رکھیے، اکیلے رب کا بننے میں مزہ کوئی نہیں آتا جب تک بچے نہ رب والے بنے، بہن بھائی نہ ملے. آپ امیجینیشن میں لائیں، سخت گرمی ہے اور آپ اے سی لگا کے بیٹھی ہیں، اور کھڑکی میں دیکھا تو آپ کی بہن باہر جل رہی ہے، آپ کو مزہ آئے گا؟ کہ آپ ہر ممکن کوشش کر کے اس کو اندر نہیں بلائیں گی. بالکل یہی کیفیت ہے کہ دا اللہ، کہ میرے پیاروں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر قرآن میں، تم بھی آؤ. رو پڑیں، ترلے کریں، منتیں کریں، لیکن ان کو مزہ چکھائیں. ایک دفعہ جو اسلام کی گھنی چھاؤں میں آ جائے، پھر اس کو کفر اور شرک میں جلنا اچھا نہیں لگتا. یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر دوسرا دیکھیے، وعاملہ صالحن. آپ کہتے ہیں چونکہ میں دوسروں کو جو اللہ سے جوڑ رہی ہوں تو اب مجھے کیا نیکی کرنی ہے؟ نہیں، خود بھی عمل کیجئے. دین کی دعوت دینے والے کا اپنا عمل دوسروں کو اس کے کہنے سے زیادہ دین پہ لے آتا ہے. اور تیسرا مرحلہ کہہ کے وقال اننی من المسلمین، ساری نسبتیں اسلام کے ساتھ، گروہوں کے ساتھ نہیں وابستہ کرنی، لوگوں کو رب سے جوڑ دو. اور اس رستے میں بڑی مشکلیں آئیں گی، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. تو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نہیں برابر بھلائی اور برائی، ادفع بالتی ہی احسن، برے سلوک کے جواب میں اچھا کر دو. ہوگا کیا؟ فیض الذی بینک و بینہ عداوت کانہ ولی حمیم، بس وہ جس کے اور تیرے بیچ میں دشمنی ہے وہ تیرا گہرا دوست ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں کل وتھ کائنڈنس، گالیوں کے جواب میں دعائیں دو، پتھروں کے جواب میں پھول پھینکو. ہے کام آسان نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات سکھائی نہیں جاتی سوائے ان کو جن کو صبر کریں جو، اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات بڑے خوش بخت لوگوں کو. ہاؤ لکی یو آر، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ہاؤ لکی، حالانکہ لکی لفظ مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وی ڈونٹ بلیو ان لک. ہاؤ بلیسڈ یو آر، یہ اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں، لک نہیں ہوتی. لیکن جملہ ویسے ہی کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جس کو دوسرے کی بری باتوں کے جواب میں اچھی بات کہنی آ گئی وہ بڑا خوش بخت ہے. اور ساتھ ہی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ہاں پھر بھی شیطان اکسائے، میں کیوں چپ رہوں؟ کہتے نہیں اینٹ کے جواب میں پتھر. تو فرمایا اگر شیطان کبھی یہ گدگدی کر بھی دے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پڑھ دو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. یہاں آپ کو اب دیکھیے جو ترتیب مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے، کہ دائی دین جب دین کی طرف بلائے تو محبت سے بلائے. اب آپ مجھے کہیں، میں آپ کو کہتی ہوں ایک جملہ کہ آپ نے نہیں سنا، لوگ آتے ہی نہیں، لوگوں کو شوق ہی نہیں، لوگ سنتے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. ٹی وی سب کے گھروں میں کم و بیش ہوتا ہی ہے، نہ بھی دیکھیں تو کسی اور کے چلانے پہ نظر پڑتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹوتھ پیسٹ کیسے بیچتے ہیں؟ چمکتے ہوئے دانت، اسمائلی فیس، اور دانت بھی عورت کے ہی دکھاتے ہیں، صرف ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت عورت کو ہی ہے. اچھا جی، میٹرس کیسے بیچتے ہیں لوگ؟ وہ ایسے اچھلتی کودتی گدے پہ لیٹتی ہیں جیسے وہ کہیں जन्नत के बागों में फिर रही हैं। फिर इसी तरह आइसक्रीम खा रहे हैं तो मुंह खुला हुआ है और चमचे मुंह में जा रहे हैं और आंखें भी खुली हैं। लोग कहते हैं वाह ये दांत देख के हम मुस्कुराएंगे, चलो ये टूथपेस्ट खरीदेंगे तो हम भी इतने प्यारे हो जाएंगे जितनी ये लड़की हो गई। अब इमेजिनेशन में लाइए, टूथपेस्ट बेच रहे हैं और यहाँ हाथ रखा हुआ है, हाय दांत में दर्द है, बड़ी तकलीफ है, और रोती हुई औरत दिखा रहे हैं, और मैट्रेस बेच रहे हैं और कमर पे हाथ है, कोई लेगा वो गद्दा, कोई लेगा वो टूथपेस्ट, और आइसक्रीम खा रहे हैं और साथ ही आप कह रहे हैं कि सर में दर्द दिखा रहे हैं या कोई मुंह में कोई और तकलीफ दिखा रहे हैं, कोई लेगा? जिस तरह से दुनिया वाले लोग दुनिया का प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये कौन होते हैं? ये एडवर्टाइज़र कौन है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो? अब आपको मुझे शौक़ है इस बात का कि लोग दीन लें, तो आपको मुझे ऐसे देना पड़ेगा। हमने आज गरीब बेढंगा बेतुका रंग रूप दिखाया दीन का, और ऐसा दीन दिखाते हैं, लोग कहते हैं अल्लाह की बना, लोग दीन नहीं लेंगे मुझसे आपसे। बुसावा सूखा दीन, दो इंतहाएं हैं, एक ने दीन बदल दिया, उसी को पतला कर दिया, वो रूह अफ़ज़ा के शरबत में पानी डाल दिया, वो भी नहीं ठीक, और कुछ ने इतना सख्त किया कि जो रुख्सतें थी वो भी नहीं ठीक। अच्छा हम कैसे बुलाते हैं क्लास के लिए? मैं अक्सर सिस्टर्स को जब पढ़ती हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा कल आपकी सूरत पूरी हो रही है तो बुला लें अपनी दोस्तों को, आती नहीं है। मैंने कहा आपको पता आती क्यों नहीं है? आप रोज़ शक्ल बना के जो उनके पास जाती हैं, हाय बड़ा मुश्किल है, बड़ी सख्ती करते हैं, और हर हफ्ते टेस्ट होता है। एक दफ़ा रियल हुआ ऐसा, मुझे बहुत पुरानी बात याद है, मैं किसी मुल्क में थी तो एक शादी थी कम्युनिटी में जहाँ मैं भी इन्वाइटेड थी, और हमारे माशाल्लाह बड़े भोले भाले स्टूडेंट भी आए हुए थे, वो राउंड टेबल पे बैठे थे, मैं दूसरे टेबल पे सुन रही थी, साथ वो अपनी लगे थे। लोगों को पता चल जाता है ना कि आप आजकल कर क्या रहे हैं, तो वो लोग भी ज़रा आपको चखते हैं, तो वो कहती बहुत मुश्किल, हर हफ्ते टेस्ट होता है। अच्छा फिर कहती है असाइनमेंट तो इतनी लंबी होती है। आज यकीन करें मेरे से दूसरे टेबल पे बैठ के सुना ना जाए, मेरा दिल डोले, मैं कहा हाय मैं मर गई, ये हो क्या रहा है? उनकी बातें सुनकर एक ही कमेंट सामने आता है कि आप जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने अगले दिन उनको खूब समझाया, अल्लाह के बंदो ऐसे बुलाते हो लोगों को, तभी नहीं आते लोग। आप जब दीन ले रहे हैं और दे रहे हैं, वो अल्लाह ही आपसे ज़्यादा स्माइली फ्रेश गुड लुकिंग रिलैक्स्ड और खुश बंदा दुनिया में किसी को कोई ना दिखे। आज क्या ये परसेप्शन नहीं है मीडिया के ऊपर कि जो रोती औरत है वो दीनदार है, काला बुरका, बच्चा रो रहा है उसका नाक भी वो दुपट्टे से साफ कर रही है, और मॉड स्कॉट टुप टुप करती हील पहनी लड़की ऐसे कपड़े पहने के जिसमें जिस्म झलके, कहते हैं हाउ सक्सेसफुल शी इज। आपको मुझे आज के दौर में दीन का ये रूप बदलना है। जहाँ दीन की पाबंदियाँ उसको लें, हराम को तो हम छोड़ते नहीं हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पर, मसलन मैंने अक्सर देखा अबाया पहन लेंगे ना तो सारी ज़िंदगी अबाया पहनना है, कुछ तो ऐसे लगता है रात को सोते भी अबाया पहन के, स्काफ पहनना है तो स्काफ ही पहनना है, क्यों भाई मना किया अल्लाह ने? शादियों में गए स्काफ पे, फिर मोती लगाएंगे ज़ाहिर है, फिर चमक वाली पिन्ने होंगी, अबायों पे मोती सितारे लगाएंगे हम, क्योंकि आप उतारना जो नहीं, ये गलत तरीका है। वो लोग जिनको आप दीन के नया नया बुला रहे हैं वो तो पहले डरे मरे हैं, और वो जब आपको औरतों में भी बैठा देख रहे हो और अबाए से माशाल्लाह स्मेल भी बड़ी आ रही है प्याज टमाटरों की, वल्लाह ही मैं माइंड ना कीजिएगा, अक्सर लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं हम माशाल्लाह ला खौफन अलैहि, अब तो कपड़े नहीं बदलते, भैया मोटी क्यों हो गई है, वो ज़रूरत ही नहीं, अब तो फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनते तो हम तो अबाए में, और स्काफ जब से लिया तो कंघी तो हम करते ही कोई नहीं है। अब मुझे बताएं ऐसा दीन लोग लेंगे? और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी और जो हंस ले कहते हैं तोबा तोबा ये दीनदार नहीं हो सकता। बिलीव मी ये एक रिएक्शन है हमारे दीन के ऊपर लोगों का, कि हम हर परेशानी का सहरा दीन पे, सोतेले बच्चों का सलूक करते हैं दीन के साथ, और फिर शौहर साहब का ज़रा मिजाज बिगड़े कहते हैं और क्लासें लो। तो मैं अपनी ये जो आपके साथ आज की बात है ना, इस आयत के ऊपर रोकूंगी। वजह आप देखिए कि एक हिस्सा और है हमारे पास तौहीद और आखरत के दलाइल का, आयत 37 से 48 है, और इसके बाद अगला हिस्सा जो इसका है वो 49 से 54 है। ये वही मज़मून है जो सूरत के शुरू में आया, क्योंकि इसमें आपको जो देना था ना वो मिल गया। अभी आपने ये सूरत पढ़नी भी है माशाल्लाह। सारी सूरत में से जो बात मुझे समझ आई है वो ये है कि दीन का खूबसूरत नमूना बनो, इस्तकामत रहो, दीन के हुक्मों को नहीं बदलो, और दुश्मनों की साजिशों को समझो। आप सच बताएं कि वो कहते हैं ला तस्मौली हाजिल कुरान, वो कामयाब हैं कि हम कामयाब हैं? वो कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान जो अपने दीन के नाम पर लोगों के साथ ये बातें करते हैं ना, اس کو ہم اچھی طرح سے پیش نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. آپ جب اس سورت کو پڑھیں گے اس میں تو بھی خزانے ہیں, خزانوں کے خزانے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ اب آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ ہم اس سورت کو ڈیٹیل سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.